गोपियों की वंदना कर रही है। हे गोपियों, हम तुम्हारी चरणों की धूलि कणा की वंदना कर रही है। ये ब्रह्मा के भी वंदनीय है, उद्धव के भी वंदनीय है, कम नहीं है ये। अब कभी ये वंदना की इसलिए परमात्म कवि होकर के अत्यंत मुग्ध होकर के नारद जी ये तो वर्णन कर रहे हैं। अभी क्या कहूं, इनके रूप गुण शील और वैदग्ध, वैदग्ध माने प्रेम का उद्दीपन भाव कृष्ण कैसे उद्दीपित होगा, ये वैदग्ध को देखकर। गोपियों का भी वैदग्ध है, कृष्ण का भी वैदग्ध है। अर्थ भावना की चातुरी को वैदग्ध करते हैं। तो ये इन कर्मों से प्रजन बनाओ। महालक्ष्मी को भी अतिक्रम करके बहुत ऊपर है महालक्ष्मी। और की तो बात क्या, उमा रमा सत्या चंद्रावली रुक्मिणी सबे अवतार नारायण या मैं शिवानी, ये सब उनके अवतार, कोई कला विकला कोई कुछ है। इसलिए कृष्ण का इतना सुंदर रूप है और इससे इसका मन लगा हुआ है, ये कैसे द्वारका में रह सकता है। अभी और बतलाए हैं आज यही तक में। नमो महावतनाय कृष्णाय हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत सप्तकांचन गोवंती राधे वृंदावनेश्वरी विश्वामित्रे देवी प्रणमामि। आदेविका सुवरवदवदयाचला जाते निपत्रो विदन्दवपुरुषसरति अंगश्यामलिङ्गकथाविरमितो मन्दीकृतीकरणं जगञ्जाबुगुरुचितं विदधतमपक्षं वरश्चक्रिया वृन्दानन्दनिवासिनं हृदगतद्दामाभिरामोदरं राधासन्दनिवेशितो जलभुजं भक्त्याभिन्नापराधं विश्वास्य कामाभितरङ्गमस्ते पितामयि शरणं प्रपन्ना वृन्दे विमक्षे शरणं गुरवे गोपीसंताय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो वैराग्यजुरभक्तिरसंतयज्ञपायन्मानुजमन्दं कृपाम्बुदीर्यपरदुःखदुःखी समाप्तं
ैवास्मिवास्मिमा
पत्रिका में ये छपा हुआ है।
द्रौपदी के सामने गौर्य गौर्य उसको गौर्य पत्रिका के रूप में संपादन आप जो शास्त्र हैं ये जान लेना उचित है। हमारे साथी इतने का ये वैदिक शास्त्र नहीं इतना ही बहुत जितने भी वैदिक शास्त्र वो दो प्रकार के एक मात्र विभाग जिनों को परमात्म में रुचि नहीं है जिनों को परमात्म में रुचि नहीं है संसारिक विषयों में ही रुचि केवल मात्र है उन लोगों के लिए स्मार्ट था और उन्हीं को स्मार्ट था। भगवान को मानने के लिए ये मानते हैं किंतु अपने सुख के लिए ही भगवान को मानते हैं और उनकी आराधना संसारिक इनको कहते हैं स्मार्ट शास्त्र स्मार्ट पंडित स्मार्ट स्मार्ट को अपने रुचि के अनुसार गौओं को देने वाले संसारी गौ विषय सुख को देने वाले शास्त्रों का ही आदर करते हैं और उन्हीं क्रियाओं का आदर करते हैं और भगवान की कृपा से जिन लोगों परमात्मिक विषय में लालसा के रूप से किसी प्रबल भाव से ही या राधा अनुराग भाव एकाचित में कृष्ण को प्रसन्न करने की भावना जी में आ गई है वो लोग मात्र शास्त्रों पर अधिक निर्भर नहीं करते उनमें अपने अनुकूल जो थोड़ा सा रास्ता है ग्रहण कर लेते हैं बाकी सब कुछ छोड़ देते हैं और मात्रों को बतलाते नहीं मैं तो कहीं जाएंगे तो ना क्योंकि संसार में 90% लोग या 99% लोग मात्र हैं और 1% जो है वो केवल पारलौकिक भाव है और 1% जो रह गए उसमें बाकी सब विभाग है कृष्ण के भाव में और एकांतिक राधा कृष्ण के भाव में बहुत कम भीष्म 99 पर गया बहुत कम ऐसा भी भाव किसने किया ब्रह्मा जी ने स्वयं किया नहीं तो ये स्मार्ट लोग कभी भी पारमार्थिक धारण में नहीं है ये ब्रह्मा जी ने ही ऐसा विभाग और ऐसा आदेश दिया जिसमें मनुस्मृति आदि संहिता अवस्थ संहिता और भक्ति संहिताएं ये सब स्मार्ट याज्ञवल्क्य संहिता सबसे प्रसिद्ध है। इन लोगों के केवल संसारिक बातें सुख और गाय भार पिता को मरने के बाद में कौन मालिक होगा यदि लड़का नहीं है तो कौन मालिक होगा लड़की भी नहीं है तो कौन मालिक होगा यदि कुटुंब में कोई नहीं है तब कौन मालिक होगा ये दाय भाग है इस मार्ग भाग यही इस मार्ग भाव तो शास्त्रों का उद्देश्य केवल लौकिक सुख समृद्धि शक्ति कोई भी क्रिया का अनुष्ठान करते हैं पर इसलिए मथुरा के चौबे इत्यादि जितने भी लोग हैं ब्राह्मण समाज अधिकांश रूप में इस मार्ग परमात्मिक पर उनका ध्यान नहीं जा उनको समझाना बेकार था उनमें जिनकी सुकृति अधिक है वो तो समझे और अपने को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं भक्तिनाथ ठाकुर जी कह रहे हैं अधिक मार्ग को उन लोगों ने
सूत बना दिया है ना, सूत जैसे निम्न जाति के लोग उसको मलमास कहते हैं, मल मलि मलूच कहते हैं, मलि मलूच संस्कृत में मलि मलूच माना मतलब चोर, उस महीने का नाम चोर भी रखते हैं, चोर का महीना पता नहीं लगता कि ये माल कहाँ गया है।
तो
इस महीना इसलिए विवाह शादी जब लोग कभी जो लौकिक जितने भी कर्म हैं न किया जाए। वैष्णव ने देखा ये तो बहुत अच्छा है, घर वालों ने हमको निकाल दिया, हम तो निकलना चाहते थे, कोई किंतु बहाना नहीं मिल रहा था निकलने का घर से, और यदि घर वालों ने पिता माता भाई बंधुओं ने हमको घर से निकाल दिया जो मैं नहीं निकल पाता था तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। यदि कान पकड़ करके गले में धक्के देकर के घर वालों ने निकाल दिया तो बुरा क्या हुआ, क्यों यहां पर रहने से तो कुछ करने देंगे नहीं। राखे कृष्ण मारे थे, जो रक्षा करने वाला कृष्ण उसको कौन मार सके, अब मारे कृष्ण रक्षा, और यदि कृष्ण ही मारेंगे तो कोई रक्षा नहीं। इसलिए हम वन में जंगल में घर में जहां भी रहेंगे बहुत अच्छा था, निकाल दिया घर से, अब तो स्वतंत्र हैं, अब एकांतिक रूप में भगवान का हम करेंगे। तो इनको समाज से जब बाहर कर दिया बारहों में मिलकर के बारह महीनों ने कहा जब क्या करें, तो भगवान के शरणागत हो गए, भगवान के पास में पहुंच गए, और वो हमने क्या करूं उनको तो ये समाज ने बाहर कर दिया। जब तुमको समाज ने अब लोगों ने स्मार्टों ने सब लोगों ने ब्राह्मणों ने भी और स्मार्ट बलियों ने भी स्मार्ट जातियों ने सभी लोगों ने तुमको बाहर कर दिया, और जब तुम हमारे शरणागत हो गए तो अब ठीक मिला, अब मेरा जो कुछ है वो सब तुमको देगा। इसलिए कह रहे हैं अहम एतद् जथा लोके प्रार्थिता पुरुषोत्तम, सब लोग मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं, इसलिए अपना जितना जो कुछ है हमारा अधिकार के अंदर अब मैंने तुमको दे दिया, अपना नाम भी तुमको ही दे दिया, अब तुम पुरुषोत्तम मास बन जाएगा, और तुम्हारे महीना का अधिष्ठात्र देव मैं बन जाऊंगा, और मेरी जितनी सामर्थ्य है जैसे हमारे नाम में सामर्थ्य है, ये पुरुषोत्तम स्वयं कृष्ण है, गीता में भी ऐसा बताया खर अक्षर और पुरुषोत्तम कृष्ण ये पुरुषोत्तम। तो हमारे देने में अधिकार में जितनी चीजें हैं जिसको समाज की और स्मार्टों को जरूरत नहीं है वो चीज क्या है, अपने पति जो प्रेम है वो मैं तो उसमें में थोड़ा सा भी जल्दी कोई कुछ करेगा। सकाम आश्चर्य जितने महीने हैं वो सब सकाम है, और ये जो तुम है तुम नीच काम रहेगा, निष्काम आयन मया कुछ आज तो मैं तुमको निष्काम कर देता। निष्काम माने क्या, कृष्ण ही जिनका केवल मात्र काम है उसको निष्काम कर देता। निष्काम माने व्यक्ति कोई कर्म नहीं है, कृष्ण की सेवा पूजा ही जिनका एकमात्र कर्म है उसको निष्कर्म करते हैं। तो पुरुषोत्तम भक्तान ना पराधम करा, पुरुषोत्तम महीना है ये भक्तों का महीना है, भक्त लोग जो क्रियाएं करते हैं उसमें अपराध की कोई बात नहीं है उनका कोई भी भक्त का, यदि भक्त है तो वो अपराध करेगा ही नहीं, भक्तों का कोई अपराध होता है, किनका अपराध होता है, अभी नए अनिष्ठित भक्त की श्रेणी में नहीं है, अनिष्ठक अनिश्चित साधक जो है उनका अपराध कुछ होता है, किंतु भक्ति यदि करने लग जाएगा तो कोई अपराध नहीं, भक्ति के काम में अपराध
क्योंकि भक्ति से जहां लाइन हो सूट हो करके और दूसरा काम किया तो उसने अपराध किया, ठाकुर जी को कोई चीज अर्पण कर रहा है, अर्पण करने में जरा दाहिने हाथ के बदले बाया हाथ लग गया, अपराध हो गया ना, ये नहीं बात को कहां हो जाएगा,
अपराध
हो रहा है कि नहीं ये तो जान सकेंगे हम,
जीवन
में
दिन में जो कुछ कर रहे हैं इसमें कोई भाग हो सकता है कि अपराध हो रहा है या नहीं,
ये
कैसे पता चलेगा कि अपराध,
जब हमारा मन भगवान की भक्ति में न लगे और हम जान बूझ करके कोई भक्ति का या भगवान का या भक्तों के दुखाचरण करेंगे तो ये अपराध, भक्ति परे का अनुभव विरक्ति के का ये मात काटी है जिसको लगा दिया जाए, यदि हो जाएगा तो अपने आप उसमें रुचि होने लगे और अपराध होगा, हम अवज्ञा करके गुरु जी से कोई बात कर रहे हैं, वैष्णव से कर रहे हैं, भक्ति के प्रति अवज्ञा हो रही है, ये तो अपने आप मान लिया, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो मालूम नहीं होती तो उसको ग्रहण नहीं करते, भक्त लोग भगवान को नहीं करते, इसलिए दाहिना हाथ के बदले में बायां हाथ हो जाए कोई बात नहीं, यशोदा जी कोई विचार नहीं, जब तक भक्ति नहीं आती है तभी सब विचार है, जब भक्ति आ गई भक्तों का इसीलिए अपराध नहीं क्योंकि वो भक्त हो गए हैं ना, आज जब तक भक्त नहीं बने हैं तभी तक अपराध का विचार है वो अपराध, किंतु जो समा भक्ति है जिसको कहते हैं उसका भाव भी आ जाएगा फिर अपराध, अपराध का प्रसिद्ध मन, उन्होंने कुछ इंटरेस्ट पैदा करने के लिए लोगों को बतलाया कि द्रौपदी जी अपने पूर्व जीवन में मेधा ऋषि की लड़की थी, मेधा ऋषि की लड़की, और एक बार उनके आश्रम में सुभाषा जी किया है और अधिक मास का महात्मा वर्णन किया है, इस महीने में कोई भी भक्ति का छोटा सा भी काम करेगा, ठाकुर जी का दर्शन, धाम में जाना, तुलसी जी की सेवा, हरिनाम करना, भागवत सुनना, भगवान की लीला कथाओं का सुनना, भगवान की लीला कथाओं का स्मरण करना, भक्तों का जीवन क्षेत्र का स्मरण करना, जमुना गंगा इत्यादि भक्तिमती जो एकादशी का पालन करना, जन्माष्टमी रामनवमी इत्यादि का पालन करना, ये सब भक्ति के अंग, तो यदि पुरुषोत्तम महीने में ये चीज कोई थोड़ा भी कर ले तो भगवान के चरणों में भक्ति होती है और पारमार्थिक लाभ होते हैं। इसमें बतलाया गया कि पुरुषोत्तम ये स्कंद पुराण का है, उसमें बतलाया गया ये सुन करके भी उपेक्षा करते हैं, द्रौपदी द्रौपदी मेधा स्थिति की लड़की है,
मेधा स्थिति
मेधा स्थिति को दूसरे दार्शनिक कहते हैं, तो मेधा की लड़की ने उसको अवज्ञा किया, सुन करके भी नहीं की, जैसे बहुत से लोग यहाँ पर कथा सुन करके और नहीं करते हैं कुछ, देवी देवताओं की पूजा करेंगे नहीं जानते थे वो एक दूसरी बात, और जान करके फिर उसको नहीं पालन करना, ये वैष्णव अवज्ञा शास्त्र अवज्ञा हो गया, इसमें थोड़ा सा जरूरत, आप नहीं जानते हैं लेता खुशी है कोई बात, और जान करके भी गणेश जी की पूजा यहां जाकर के करेंगे और कृष्ण के सिर पर रख देंगे हो गया, बहुत सी ऐसी है ऐसा करते अधिकांश, हम जाएंगे घरों घरों में अब देखेंगे कि किसके घर में गणेश और शंकर जी और कौन कौन रखे हैं,
हम तो भी नहीं
किए, जब नहीं किया तो हुआ क्या, उस जन्म में जितना जो अवशिष्ट जीवन का था समय
उसमें और दूसरे जन्म में भी कुछ उनको प्राप्त हुआ। उस जन्म में तो जो कष्ट हुआ और दूसरे जन्म में पांच पतियों की आज्ञा का पालन करना पड़ा, अभिन्न रहना पड़ा। एक एक आदमी एक एक तरह के, कोई महाबलवान, कोई ऊंच, कोई ऊंच, और सबकी रुचि रखना पड़ता और उनका नंगी करके पतियों के सामने ही और अपने पितामह और सब लोगों के गुरु वर्गों के सामने रजस्वला स्थिति में केस को पकड़ करके खींचा और कितना अपमान किया। और उनके रहते रहते ही उनके पांचों लड़कों को और दूसरी सुभद्रा के लड़कों को भी खत्म कर, ये सब करना वो डर दिखलाया जा रहा है। ये सबको यहाँ पर हमारे यहाँ पर ऐसे लोग नहीं है, इतने तो स्मार्ट होते अभी सताते जैसे हाँ वो ये इसके कारण हुआ, किंतु इसमें शिक्षा देने के लिए ऐसा कह रहे हैं। वो तो हुआ था केवल उनकी इच्छा से, भगवान की परिकर थी, लोगों की शिक्षा के लिए उन्होंने ऐसा आचरण दिखाया। भगवान पर विश्वास रहने पर कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता, इस चीज को दिखलाना था, भक्तों की महिमा दिखलाना था, इसी चीज दूसरे जन्म में अर्थात द्रौपदी के जन्म में जब वनवास हो गया तो तुलसा जी मिल गए काम में बन गए। उन्होंने ध्यान लगा कर कहा द्रौपदी पहले जन्म में मेधा की लड़की थी, मैंने तुमसे कहा था तुमने ये प्रश्न नहीं किया, अब इस जन्म में अब तुमको सुयोग है, इस वन में ही पुरुषोत्तम महीना आया है, 14 वर्ष का तो वनवास था, तो 14 महीने में कितना दिन कितनी बार आया होगा पुरुषोत्तम,
12 वर्ष,
2 वर्ष, 4 महीने, 15 दिन या कितना का हाँ? रख लो 32 महीनों में, 32 महीना और 16 दिन 4 घंटा इतना सब निकाल करके रखा है। 32 महीना 16 दिन 4 घंटे
5 बार
इतने में एक पुरुषोत्तम महीना, इसीलिए कभी किसी महीने में किसी कभी किस महीने में ये होता जाए। ये होता क्यों है, एक चांद्र वर्ष होता है और एक पौर वर्ष होता है। एक चांद्रमास से कहना प्रति दिन के हिसाब से 360 से 365 दिन में एक सूरज के चारों तरफ में पृथ्वी घूम जाती है, इसके हिसाब से एक वर्ष होता है 365। और चंद्र महीना होता है, चंद्र पृथ्वी को घूमते हुए सूर्य को जो घूमती है तेजी के साथ में, वो निकट है पृथ्वी, तो उसमें कुछ कम दिन लगते हैं। अब दोनों को मिलाकर के एक करने के लिए हर 32 महीना और कितने दिन में एक लीप ईयर बना दिया जाता है, जैसे अंग्रेजी में लीप ईयर होता है कितने दिन में
4 वर्ष,
अधिक 4 वर्ष में वो कितने घंटे घंटे मिलाकर के एक एक महीने में वो काटते हैं, हर 4 महीने के बाद में 29 दिन का हो जाएगा फरवरी और 28 दिन का होता जाएगा
6 घंटा,
और वही जोड़ते 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 एक दिन ले आएंगे, हर 2 वर्ष में या कितने
4 वर्ष
में 20 ईयर उनके पास, ऐसे हिंदी और में सौर वर्ष और चंद्र वर्ष को दोनों को ठीक एक रखने के लिए ऐसा। चंद्र में तिथि का योग होता है, तिथि से विचार होता है, और सौर्य में दिन से विचार होता है। कभी कभी तिथियां घटती बढ़ती हैं, हम लोग जितने भी पर्व उत्सव और जो कुछ भी करते हैं तिथि के अनुसार में करते हैं, तिथि के अनुसार दिन के अनुसार में। शुक्रवार को हमारा जन्म हुआ कोई जरूर नहीं है कि अगले वर्ष शुक्रवार को ही होगा, उसमें तिथियां घट पड़ जाती हैं। उस अनुसार में हम लोग ठीक तिथि ठीक रखते हैं, दिन नहीं। पर ये सब की क्या जरूरत है भक्ति में, घट पचल क्या जरूरत नहीं, कुछ प्रचार में जरूरत है, कुछ जानने की भी जरूरत है। जिसको थोड़ा सा बुद्धि भगवान ने दिया है वो तो थोड़ा सा जान लेंगे, अंततः तो इतना एक सिद्धांत फॉर्मूला के रूप में जान लेंगे। अब तो जब दुर्वासा जी ने बतलाया कि तुमने ऐसी अवज्ञा मेरी बातों की थी, इसलिए इस वर्ष अब इसमें तुम इसका पक्का पाओ। उन्होंने कहा कि मैं जिस चीज में आ जाऊंगा और बतला जाऊंगा, कभी 10-15 दिन रह गया, एक महीना तुम्हारे पास नहीं रहेगा, तब तक तुम्हारी भिक्षा का ग्रहण करूंगा, और किस नियम से पालन करता है किया जाता है, मैं तुम्हें बतला दूंगा। प्रकार के जगत में लोग हैं, अंतर्मुख में भी जो लोग बहिर्मुख है उनको छोड़ दो, वो कोई व्रत इत्यादि से संबंध नहीं रखते। तीन प्रकार के लोग हैं जिनको व्रत इत्यादि से संबंध है। एक लोग हैं स्वनिष्ठ, एक है परिनिष्ठी, और तीसरे हैं निरपेक्ष ऐकांतिक या पारमार्थिक। हम लोग भक्ति उसमें
देवधर्म में
नहीं, या शिक्षा में ही है। बहुत सुंदर उसको बतला है कहाँ कहाँ पर कौन कौन दोस्त होता है, ये सब बतला है। स्वनिष्ठ, स्व माने ये शरीर, शरीर में जो निष्ठा गिनती है, ऐसे भौतिकवादी शरीरवादी लोगों का किंतु अंतर्मुख कुछ हो रहे हैं। भगवान को मानते हैं, परमों को भी मानते हैं, किंतु अपने स्वसुख के लिए जो काम कर रहे हैं उसमार्थ वाले होते हैं ना। दूसरे हैं परनिष्ठ, परिनिष्ठित, सदगुरु से दीक्षा और शिक्षा लेकर के मंत्र लेकर कुछ अभी निष्ठा अभी उत्पन्न होने जा रही है, अपने संप्रदाय के अनुसार वो लोग व्रत इत्यादि को पालन करते हैं भगवान के उद्देश्य, अपना कल्याण होने के लिए यथार्थता ये करते हैं। और तीसरे जो पारमार्थिक हैं वो कौन है, ऐकांतिक राधा कृष्ण का भजन करने वाले या ब्रजपा भाव ग्रहण करने वाले जो ऐकांतिक होते हैं, वो निष्ठा से भी ऊपर चले गए हैं, इन लोगों को कहते हैं पारमार्थिक। निष्ठा होना ही पारमार्थिक नहीं है, वो तो परमात्मिक रूप में अभी निष्ठा हुई है, अभी रुचि तक हुई, आसक्ति तक नहीं हुई, और जिन लोगों को आसक्ति तक उत्पन्न हो गई, अब भाव के लिए अब केवल आवश्यकता है, ऐसे लोगों को कहते हैं परमात्मा। तीन स्वनिष्ठ जो हैं ये अपने शरीर इत्यादि के सुख के लिए ये सब काम कर, एकादशी से लेकर जितने भी व्रत है अपने सुख इत्यादि के लिए करता है, स्वर्ग इत्यादि के लिए करता है, अपने लिए करता है, भक्ति से इनका वैसा कोई संबंध नहीं। ये साधारण लोग या साधारण गुरुओं से जो दीक्षा लेने वाले हैं, सब जितने अवतार हैं या जितने भी देवता हैं सबका आदर करते हैं। हनुमान जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, मैया हैं, वृक्ष है, काल वृक्ष पर दूध है उसको है, सबको बराबर दृष्टि से देखो। ये सब जो है ये लोग स्वनिष्ठ हैं। परिनिष्ठित भक्त मंडली अपने आचार्य अर्थात गुरु के द्वारा दीक्षा शिक्षा ग्रहण कर कार्तिक व्रत इत्यादि पालन के नियम के अनुसार में सफल होगा, उसका उद्देश्य उसमें के लिए होता है। और जिन लोगों को रुचि उत्पन्न हो गई राधा कृष्ण में एकांतिक रूप से, जो आप कहीं नहीं जाएंगे, वो एकांतिक परमार्थी जिनको भाव भक्ति की जरूरत है, ऐसे लोग तीन हम लोगों के यहाँ पर भी तीन प्रकार के आदमी और निरपेक्ष जो भक्त लोग होते हैं वो
है नहीं जब
निरपेक्ष धर्म रक्षण धर्म की रक्षा नहीं होती निरपेक्षों में, जो कह दिया बस उसकी बात मान लिया। हमारे घर में सत्यनारायण की पूजा हो रही है महाराज जी, आपको जरूर करना पड़ेगा, आप नहीं चलेंगे तो ये काम होगा ही नहीं, हम करेंगे, आप नहीं जाएंगे तो मैं नहीं करूँगी बात करो, उसमें से कुछ रुपया हमको दे देना हमारे ठाकुर जी के लिए, 10,000 रुपया वहाँ 20,000 कर रहा है तो 5,000 रुपया हमको दे देना, ठीक नहीं करना बस कपड़ा ले लिया ये सब भी आए चले गए हाट के साथ में खोजो और कीर्तन कराया और चले, ये क्या हो गया, ये गया तीसरी सबसे लेने के लिए उसने चढ़ाया, निरपेक्ष होना होगा भाई, दृढ़ता वज्र के समान, यदि उनको मोड़ सको जाकर के तब तो जाओ, आने तो तुम खुद मोड़ जाओ तो मत जाओ, मुड़ने के लिए मत जाओ, मोड़ने के लिए जाओ, मोड़ जाओ तो जैसे वो नारद जी और अंगिरा जी महाराज चित्रकेतु के पास में गए, मुड़ने के लिए गए कि मोड़ दिया जाकर,
मोड़ दिया
ऐसे नारद जी जहां जहां गए हैं सबको मोड़ दिया, ऐसे एकांतिक परमार्थिक लोग होते हैं, इनकी जितनी क्षमता है जैसे हमारे आचार्य लोग हुए हैं। और हम लोग अभी करने जाएंगे, अभी तो तीसरी श्रेणी में ही है मरे, इसलिए कहते हैं निरपेक्ष भक्त लोग केवल मात्र शुद्ध भक्ति के लिए ही जो कुछ भी क्रिया करेंगे दृढ़ता के साथ में निरपेक्ष होकर के, लोग दोनों के लिए तो ये बता है, एकांतिक लोगों के लिए कह रहे हैं ये जो अभी पुरुषोत्तम महीना आया या कार्तिक महीना आया उसमें बताया कि एक बार खाना चाहिए तीन पहर में, जो लोग परिनिष्ठित हैं अथवा स्वनिष्ठ हैं स्वनिष्ठों के लिए अभी वो एक बार खाएंगे दिन में सब खाएंगे, और वैष्णव और ब्राह्मण को भोजन देकर के ठाकुर जी को देकर के और प्रतिदिन यमुना में स्नान करने जाएंगे या गंगा में और त्रिवेणी के घाट पर अधिक महात्मा है स्वनिष्ठ इत्यादि के लिए बदला है, और झूठ नहीं बोलेंगे सच बोलेंगे, और जितनी भी लौकी नहीं खाएंगे, बैंगन का फर्ता और पुलाव होता है ना बैंगन का कोफ्ता, वो बड़ा पूरा रूप से महाराज क्या क्या करना है क्या क्या चीज छोड़ना है वो अच्छी तरह से नोट कर दिया और उसको करना है, चाहे भले ही कुछ छूट जाए किंतु सवेरे का 4-5 बजे यमुना का स्नान गंगा का स्नान ये सब, और चाहे जो कुछ हो सुनने न सुने उस जहां पर कथा हो वहां पर जाएंगे, तो एक तरह से ये तो ठीक है, और वो चावल जो सिद्ध होता है नहीं खाएंगे, बैंगन नहीं खाएंगे, भूमि का जो नमक निकलता है वो नहीं खाएंगे, भूमि से नमक निकलता है नहीं से जमीन से, जमीन में सफेद हो जाती है रेगिस्तान में, उसको ऐसे लगा करके निकाल लेते हैं और उसको बर्तन में रख देते हैं, ऊपर में नमक हो जाता है नीचे पानी बैठ जाता है, उसको फिर उठा लेते हैं फिर उसको सुखा देते हैं नमक बन जाता है, ब्राह्मण का बेचा हुआ नमक नहीं लेना चाहिए, ब्राह्मण यदि नमक बेच रहा हो ऐसे ऐसे सब चीजें ये सब अपनाया गया, निश्चित से जहां आगे बढ़ा उसके लिए बस तीन चीज है, क्या चीज, श्रवणम कीर्तनम भगवान की लीला कथाओं का श्रवण, भगवान की लीला कथाओं का कीर्तन और उनका स्मरण। सिंह की उनके लिए एकांतिकों के लिए प्रधान है और सब चीज की वो रक्षा करने की चेष्टा करेंगे, किंतु न हो तो कोई बात नहीं, उनको कुछ गड़बड़ी नहीं ये सब कर सकते। ठाकुर जी को आज बैगन का भोग लग गया है, महाभारत अशुद्ध हो गया, बिगड़ करके लाल पीले हो गए, हड़िया तोड़ दीजिए धनिया में बनी थी और कोई बंद कर दी और उत्पात मच गया, ऐसा नहीं। ये उनके लिए है स्वादिष्ट लोगों, वो ऐसा है अजीब को परमार्थ की लालसा है, ये सब छोड़ देंगे, किंतु हठात ठाकुर जी का भोग सामने आ गया, आदर करते किस प्रकार करते, ये मक्खन भी ये बनाओ, बैगन बनाओ और ये सब बनाओ, किंतु बाई चांस ठाकुर जी का प्रसाद सामने आ गया तो क्या करो? किंतु जहां तक हो सके बचने की हम चेष्टा करें, किंतु हमारा मूल उद्देश्य कृष्ण के प्रति भक्ति हो, इसलिए एकांत कृष्ण भक्तों के लिए स्मरण श्रवण कीर्तन और स्मरण श्रीमद्भागवतार। इसलिए श्रीमद्भागवतार क्योंकि कृष्ण लीला का क्षेत्र सामो पांग इसी में वर्णनीय है, ऐसा कोई दूसरा शास्त्र है ही नहीं जिसमें ऐसा वर्णित है। इसलिए पुरुषोत्तम कृष्ण है, उनकी शक्ति राधिका जी है, इसलिए राधा गोविंद की उपासना ही पुरुषोत्तम महीने का एकमात्र है। हमने बना लिया है कार्तिक महीने में पुरुषोत्तम महीने में 1008 बार परिक्रमा करेंगे मंदिर, गिरिराज गोवर्धन की हम रोज एक परिक्रमा या दो परिक्रमा, हरि कथा हो और न हो इससे उनका कोई भी मतलब नहीं, एकांतिक भक्ति नहीं है, आराध्य नहीं है, वो तो केवल मन का धन है। इसलिए इस पर जोर देने की तुम लोग एकांतिक होने की चेष्टा करो, और भी हो जाए तो ठीक है, न हो तो भी यदि श्रवण कीर्तन स्मरण हो गया इसी पर वो जोर देते हैं, किंतु और किसी की उपेक्षा करते नहीं है, यदि हो जाती है कोई बात नहीं, जान बूझ करके न अंगों में विशेष करके नौका भक्ति में भी ये तीन और सब में व्यस्त नहीं रहते हैं, कौन कौन बाकी कौन रह गया करने साथ हो गया तो ठीक है, जो हरिनाम कर रहे हैं उसके साथ में मिलाकर स्मरण कर रहे हैं और हरि कथा का श्रवण करते हैं, ये मत समझना ये आज हमने अत्यंत नहीं किया हमारा सब हो गया तो ठीक है, सब करने की चेष्टा करने के लिए, किंतु एकांतिक भाव से श्रवण कीर्तन और स्मरण में ही एकांतिक भक्तों का चित्त लगना चाहिए। अच्छा श्रवण कीर्तन स्मरण भी एक तरह का नहीं है, एक तरह का नहीं, भक्ति के अधिकार से तारतम्य से तरह तरह के उसके स्तर है, जिसका जैसा अधिकार है वैसा करेगा। जो कि भागवत के 9 स्कंद इधर और 2 स्कंद उधर न सुन करके 10 स्कंद में ही जिनका चित्त एकदम भरपूर रूप से बन गया है, क्या करेंगे? उनका अपराध नहीं है, ऐसे तो अपराध हो जाएगा, किंतु जब भी वो ऐसी निष्ठा हो गई तो बृहद भगवत अमृत में भगवत बात भगवत अमृत में इस सब का विशेष रूप से वर्णन किया गया, हम लोगों ने वर्णन किया बृहद भगवत अमृत भागवत का भी अमृत है, किस चीज का अमृत माने क्या सार, तो उसको भी मत करके उसमें से मक्खन निकाल लिया, हम मक्खन को आग पर रख दिया तो उसमें से भी कुछ निकल गया ना, मक्खन में से तो उसमें घी अलग हो गया, और घी को जितना भी आग पर रखो या कुछ भी करो, अब दूसरा कुछ होगा। ब्रज भक्ति का सार क्या है, राधा भाव का सार क्या है, ऐसे इसलिए एकांतिक लोग हैं। हम लोगों को क्रमशः स्वनिष्ठ को तो छोड़ ही देना है, जो लोग कुशल परनिष्ठ से चलना पड़ेगा, और चल करके एकांतिक भक्त के जितने भी भाव हैं उनको लाने की कोशिश करें। अब स्वनिष्ठ के लिए बतला रहे हैं, जो कुछ है उसका पूजन करें ना, हवेचंद का पूजन करें। हवेचंद क्या, गेहूं आपक चावल, आपक चावल माने कच्चा चावल, थाली तंदूर, थाली चावल एक होगा, सामान का चावल होती है, तानू गोल गोल उनका वो खोल भागने पर थोड़ी थोड़ी सील हो जाती है, और दूध में पाक कर देते हैं, रामदाना उसका चावल, और बिना बोए हुए ही वो लोग सामा चावल भी त्यागी हो जाए। कोदो एक होता है, कोदो जानना है, ऋषि लोग कोदो का ही चावल खाते थे, ये सब चावल नहीं, वो होता ही नहीं था, कोदो अपने आप हो जाता था जल में, जहां पर जल होता है, और वो जैसे वो फूल होता है, कौन फूल फूल होता है, अरे वो पत्ते फटा हुआ थोड़ा सुगंध, ऐसे ही कोदो के चावल सब उसमें बंद रहते हैं, वो गुफा जैसा वो बंद रहता है, और उसको माता से पीस करके उसको से चावल निकालते, ऋषियों के लिए यही सब उपलब्ध थे चावल, ये जौ निर्गुण और बहुत अच्छा थी, तीन मटर वास्तुक सार बिना बोए हुए सार, वो कौन कौन सा है, सभी प्रकार के सार, फिर मोट का बंगाल की तरफ सीता कड़ुआ होता है, आद्रक अदरक मूली कंदमूल कंद कांकड़, ये जो कांकड़ होती है पतली अभी आ रही है बाजार, रंभा केला सिंधा नमक, सिंधा नमक समुद्र का नमक, दही दीप और गाय भैंस और बकरी के दूध नहीं, और सब तांत्रिक हैं, भेड़ का एक सब ऊंट भेड़ ये सब जो चीजें हैं ये तांत्रिक, बकरी का दूध माने कटहल आम हरतकी पिपली जीरक सोंठ इमली, आटा एक फल होता है,
आटा माने सीताफल,
और ईख से बनी हुई चीनी, तार का बना हुआ चीनी और मिश्री नहीं, तार के भी बनते हैं उसका नहीं, चीनी से बना हुआ यानी गुड़ से बना हुआ इसका मिश्री, ये सब जो व्यंजन सरसों राई ये दोनों बनकर ये सब चीजें लेनी चाहिए। एक आदमी ये ले रहा है हविष्यान बना करके पका करके लेता है, और एक आदमी कुछ भी नहीं करता ठाकुर जी को जो भोग लगा और लेकर के पाया, दोनों में कौन सा अच्छा रहा उसमें विचार मत करो, जो ठाकुर जी के लिए वैष्णवों के आश्रम में ये सब बनता है उसको ग्रहण करो, और नहीं तो पृथक रूप में तुम कहेगा यहाँ बेचार में खाएंगे तो वो पहले वाली श्रेणी में चला गया, इसलिए ठाकुर जी को जो भोग लगा प्रेम के साथ में श्रद्धा के साथ में उसको तुम लोग ग्रहण करो। प्रकार का भी मध्यमान का उसके गुण वाले कोई भी द्रव्य जैसे सूरज की दाल, इसको मांस कलाई कहते हैं, मसूर की दाल, ये सब नहीं लेना चाहिए। नींबू में कुछ नींबू होता है, गोड़ा नींबू और
खट्टा बहुत ज्यादा खट्टा,
कोई चीज अधिक कड़ा मिर्च, अधिक चरकरा और अधिक ये सब चीजें मत लो। कुल कर्कटी एक होती है, होता है देखा है, लंबी लंबी कांकर के जैसे है, उसमें सफेद सफेद धारियां होती हैं, वो नहीं। मान जाती मधु राई सबका समग्र मादक द्रव्य, तिल का तेल, किंतु आगे बतलाया तिल